हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
सभी यात्रियों को सोचना है कि वो कृपा करके सामने आ जाए, कथाकार के सामने, जिसके लिए कथा कर रहे हैं वो सामने होना चाहिए। प्लीज कम इन फ्रंट।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Please come in the front.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
एक बार सब लोग पुकारो प्रेम से,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
सिद्ध भगवान की
जय।
श्री वेंकटरमण भगवान की
जय।
श्री बिंदु माधव भगवान की
जय।
श्री विठ्ठल देव की
जय।
ताई गौर प्रमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
सरस्वतीं व्यासं
ततो जया मुदीरये
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
जो लोग यहाँ पर रास्ते में बैठे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी गांव वालों के लिए मंदिर का दर्शन खुला हुआ है। वो सब लोग प्रदक्षिणा करेंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको बैठना है। हम यस गांव में अतिथि है, इस गांव के लोग अभी दर्शन के लिए आएंगे। थोड़ा स्पीकर को उस तरफ घुमा लो, ऑडियंस की तरफ घुमा लो। बस ठीक। अभी थोड़ा ही समय बाकी है, 7 बजे स्वर्ण के पालकी में यहाँ पर जुलूस निकलेगा। यहाँ पर रखी हुई देखा ना आपने, सब लोग ने, यहाँ इस तरफ भी बहुत सारे अलंकार और साधन रखे हुए हैं और मंदिर के उस तरफ भी बहुत सुंदर भंडार है, जहाँ पर चांदी के गरुड़ जी, हनुमान जी और रथ चांदी का, सोने का, सब वहाँ पर रखा हुआ है। साउथ इंडिया के मंदिरों का यही वैभव है, जो भी है सब ओरिजिनल है, कोई नकली नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास कम से कम 600 साल पहले तक जाता है। इस मंदिर के विग्रह में 3 स्तर हैं। सबके ऊपर वाले स्तर में भगवान वेंकटरमण जी हैं, उनके साथ भूदेवी और रंगदेवी विराजमान हैं। उसके बीच के स्तर में नरसिंह भगवान है, उग्र नरसिंह भगवान, और उसके नीचे के स्तर में बिंदु माधव भगवान और भूदेवी श्रीदेवी हैं। उनके साथ साथ सबसे ग्राउंड लेवल में शालिग्राम शिला एक सुंदर बक्से में रखी हुई है। उसके बाजू में 2 विट्ठल की मूर्तियां हैं, एक उडुपी कृष्ण की मूर्ति है और बाजू में व्यासदेव जी बैठे हुए हैं। ये पूरा ऑल्टर है। अगर आपको गौर से देखना है तो बीच वाले में बड़े मोटे मोटे वाइट रंग के फूल ऐसे रखे हैं कमान में, उसके नीचे नरसिंह भगवान है, उसका मुख भी देख सकते हैं और आप हिरण्यकशिपु को भी देख सकते हैं जो ऐसे इस तरह से नीचे की तरह ऐसे गोल हैं, और ऊपर की तरह जो वाइट रंग के फूल ऐसे हैं उसके नीचे नरसिंह भगवान। उसके ऊपर 3 व्यक्ति है, बीच वाली व्यक्ति बड़ी है वेंकट रमण जी, 2 व्यक्तियाँ भूदेवी श्रीदेवी छोटी सी, उसके ऊपर ऐसे फूल लगाए हुए हैं और नीचे वाले में भी ऐसे लगाए हुए हैं, उसके नीचे बिंदु माधव जी है। वो जो फोटो मैंने आपको दिखाया उसको आप गौर से निहारेंगे तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं बराबर से। तो पहला इतिहास यह है, सुबह हम कारकाड़ा में गए थे और कारकाड़ा में वहाँ पर वेंकट रमण का मंदिर था और उस समय विजयनगर का जो राजा था उसका यहाँ पर आधिपत्य था, और कारकड़ का राजा उसके मांडलिकत्व में था, मतलब उसको सावंत था कहते हैं। सावंत था मतलब जो उनके आधिपत्य में है, उनको टैक्स देते हैं और उनके आदेश में रहते हैं। तो कारकड़ के राजा ने जब विरोध किया, मतलब संघर्ष किया, तो विजयनगर के राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया कारकड़ में, जहाँ सुबह हम लोग गए थे, अनंत शयना मंदिर के पास वहाँ वो कारकड़ा है। तो जब युद्ध हुआ तभी जो ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रियों ने युद्ध शुरू किया, तो ब्राह्मणों ने अपने विग्रहों को उठाया और वो भाग भाग के मुल्की की ओर आए। बाय द वे इस क्षेत्र का नाम है श्री मूलिका क्षेत्र, ये शंभवी नदी के पवित्र किनारे में बसा हुआ गांव है, और लोकल लैंग्वेज में उसको मुल्की कहते हैं, लेकिन उसका संस्कृत नाम है श्री मूलिका क्षेत्र। और भी एक नाम है इसका वड़ालंका, वड़ालंका VOLA लंका। इसके दो कारण हैं, क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आकाश से उड़ रहे थे, सॉरी जब संजीवनी ढूंढने के लिए आ रहे थे, तो बीच में बहुत सुंदर उनको, मेरे ख्याल से वो वापस लौट के आ रहे थे, तो वापस लौट के आ रहे थे उनको बहुत सुंदर ऐश्वर्य संपन्न जगह दिखाई पड़ी, जैसे लंका कैसी है ऐश्वर्य संपन्न है। तो बीच में उतर गए, तो उतर के देखा तो यहाँ पर राक्षस नहीं है, पर मनुष्य रहते हैं, तो समझ गए कि यार लंका नहीं है, लंका के पहले ही हम लोग उतर गए। तो उन्होंने इस भूमि के वैभव और ऐश्वर्य को देखते हुए फिर छलांग लगाई आकाश में, उसको नाम दिया वड़ालंका, जो लंका के जैसा ही है। फिर जब रावण कई बार आगे पीछे जाते हैं यहाँ पर ना, स्वर्ग को परास्त करने के लिए, देवताओं को परास्त करने के लिए, तो एक बार वो भी यहाँ पर उतर गए थे इस यहाँ का ऐश्वर्य देखते हुए। और रावण ने यहाँ पर बहुत ही पास में उसका नाम है पेड़ाम्बुदुर, ऐसा कुछ नाम है गाँव का, पेड़ाम्बुनूर ऐसा कुछ नाम है, 12 किलोमीटर है, वहाँ पर महेश और पार्वती देवी का मंदिर स्थापन किया था उसने, और उसने भी अपनी लंका जैसा ही इसको समझा, तो उसका नाम वड़ालंका रह गया है। तो शंभवी नाम की बहुत पवित्र नदी बहुत 2 मिनट के अंतर यहाँ पर है। तो मैं क्या कह रहा था, तो ब्राह्मण लोग वेंकट रमणा की मूर्ति को लेकर भाग गए वहाँ से और मुल्की में आए, और वहाँ उन्होंने एक कुएं में सब विग्रहों को डाल दिया, वेंकट रमण के विग्रह को, और वो यहीं पर रह गए कुछ दिन के लिए। जब युद्ध समाप्त तो हुआ, कारकड़ के राजा शरण आए और सब कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने दोबारा कुएं से उन विग्रहों को निकालना चाहा, लेकिन उनको कुएं में विग्रह नहीं मिले। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुए, तो नाराज़ होकर वो चले गए। उसके बाद मुल्की के लोगों ने जब कुएं में ढूंढा तो उनको तुरंत ही वो विग्रह मिल गए, बहुत तुरंत, और एक खबर फैल गई कि मुल्की के लोगों को विग्रह मिल गए हैं। तो कारकड़ के लोग वापस लौट के आए और मूर्ति की मांग करने लगे, तो मुल्की के लोगों ने कहा कि हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपको नहीं मिला, हमको मिला। तो उनमें संघर्ष हो गया, बहुत बड़ा संघर्ष हो गया उनके अंदर, कि हमारे पास मूर्ति आनी चाहिए, हमारे पास रहनी चाहिए। तो उस दिन जब संघर्ष बहुत पराकोटी में पहुँच गया, तो रात को दोनों पार्टियों के ब्राह्मणों को भगवान स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि हम मुल्की में ही रहेंगे और कारकाल में नहीं रहेंगे, कारकाल में और विग्रह आएंगे, कोई एक साधु आएगा और विग्रह देगा, उसको कारकाल में स्थापन कर लेना। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम दिन में मुल्की में रहेंगे और रात हमारी कारकाल में बिताएंगे, ऐसा भी बताया उन्होंने। तो फिर संघर्ष मिट गया और फिर वेंकट रमण जी यहाँ पर विराजमान हुए। तो इस गाँव में जैसे विजयनगर के राजा का आधिपत्य था, तो मुल्की का भी राज्य था, वहाँ पर भी राजा थे। उन्होंने गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों को यहाँ पर भटकड़ से बुलाया, भटकड़ नाम का एक बहुत गांव है, यहाँ पर ट्रेन से आता है, अभी तो उसका पूरा नक्शा बदल गया है, पाकिस्तान हो गया है पूरा, लेकिन उस समय पर बहुत ही समृद्ध और बहुत ही कुशल और बहुत ही धर्मपरायण ऐसे गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का वहाँ पर निवास था। तो यहाँ के राजा ने यहाँ का आध्यात्मिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए वो 5 परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आपका हम घर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप रहिए यहाँ पर और इस गांव की शान बढ़ाइए। तो जब वो वहाँ से आए, तो उसमें 2 ब्राह्मण जो थे उनके गुरुजी ने उनको एक एक विट्ठल की मूर्ति दी थी घर में पूजा करने के लिए। तो जब उनको शिफ्ट होना था तो वो अपनी अपनी 2 विट्ठल की मूर्ति, मतलब एक फैमिली में एक विग्रह लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने उनको बसा दिया। अब रही बात उग्र नरसिंह की, मैं आखिरी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये स्टोरी बहुत रोचक स्टोरी है।
कैसे हम आए भगवान।
इसकी स्टोरी जो है वो प्रहलाद महाराज की कथा से शुरू होती है। आप जानते हैं प्रहलाद महाराज ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उनको रक्षण किया और फिर प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूछा, मैंने सब बताया आपको, क्या वरदान दे दूं, तो उन्होंने जो भी मांगा आपको मैंने बताया। आखिर में प्रहलाद जी ने कहा कि हमें आपके विग्रह दे दो ताकि हम आपका दर्शन हमेशा करते रहें। क्या शोर मच रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, साइलेंस प्लीज। तो फिर नरसिंह भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और अपने बहुत सुंदर विग्रह बनाया उग्र नरसिंह, और वो विग्रह जो है वो प्रहलाद महाराज ने उसका पूजन किया। जब प्रहलाद महाराज अंतर्धान भी हो गए तो उनके साथ में वो विग्रह गए। और आपने बलि महाराज की कथा सुनी होगी, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, याद रखना। आप में से सब लोग श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है सबसे भक्ति में सर्वोच्च प्रमाण शास्त्र है। जब तक आप सबको श्रीमद् भागवत की रुचि आसक्ति नहीं निर्माण होती है तब तक आप सही रूप से भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। वो सबसे प्रमाण शास्त्र है। तो उसके बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन होता है और विरोचन का पुत्र है बलि, महाबली। और महाबली की लीला में भगवान वामन देव बंद कराते हैं और महाबली को पाताल में भेज देते हैं, सूतल लोक में, और वादा भी करते हैं कि मैं तुम्हारे संग में सूतल लोक में आऊँगा। तो उस कथा में जब महाबली का सब कुछ हरण कर लिया भगवान ने और महाबली एकदम दरिद्री हो गया, मतलब उसके साथ एक कौड़ी भी नहीं उनकी बची खुद की, सब कुछ भगवान ने ले लिया, तो वरुण का पास जो था उससे गरुड़ ने बलि महाराज को बांध दिया और उसको घसीटने लगे वो। तब बलि महाराज ने हृदय से भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन जनता के दृष्टि से सब उनका अपमान हो रहा था, बहुत भयंकर अपमान उनका हो रहा था। तो उस भयंकर अवस्था में जब जनता के दृष्टि से सभी हितैषियों के सामने, सभी प्रेमियों के सामने, शत्रुओं के सामने, मित्रों के सामने महाबली का बहुत भयंकर अपराध हो रहा था, उस समय भगवान ने उनको वादा किया कि मैं तुम्हें सूतल लोक भेजूंगा जो इंद्र से भी, लोक से भी बढ़कर होगा। उसका ऐश्वर्य देकर इंद्र के भी मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। इतना ही नहीं कि उस लोक में तुम्हें थकान कभी भी नहीं होगी, कभी तुम्हें इंद्रियों में वश नहीं हो जाओगे, तुम्हारी कीर्ति सब जगह फैलेगी, तुम्हें बीमारी नहीं होगी, तुम्हारा ज्ञान बना रहेगा, राक्षस परिवारों के सदस्यों का संग रहने पर भी तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमेशा तुम मेरी चेतना में मग्न रहोगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अपना चक्र भी दूंगा, जब कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या करेगा उसके पहले ही मेरा चक्र उसको काट देगा। इतना ही नहीं, मैं स्वयं भी आऊंगा और तुम्हारे सूतल लोक में द्वारपाल बनूंगा। कितना वरदान दिया महाराज बलि को, क्योंकि महाराज बलि प्रहलाद के ग्रैंडसन थे और प्रहलाद जी को भगवान ने वादा किया था कि तुम्हारी 21 पीढ़ी को मैं उद्धार दूंगा, तुम्हारे पहले के 10, तुम्हारी एक और तुम्हारे आगे वाली 10, 21 पीढ़ियां केवल तुम्हारे होने से, तुम प्रहलाद हो, मेरे भक्त हो, इसकी वजह से तुम्हारी 21 पीढ़ियां को उद्धार हो जाएगा। और इस समय प्रहलाद महाबली का जब लीला हो रहा है तो जब उनको घसीटा जा रहा है और जो आगे का मैंने आपको बताया भगवान ने क्या क्या वर्णन किया, उसके थोड़े से पहले प्रहलाद जी प्रकट हो गए अपने ग्रैंडसन के सामने और उन्होंने बहुत स्तुति की प्रहलाद की, अपने बलि महाराज की, कि बलि महाराज कितने महान वैष्णव हैं। और बलि महाराज की तरफ से भगवान के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सराहना की, ये ग्लोरीफाइड बलि महाराज इन फ्रंट ऑफ वामन देव, कि मेरा जो ग्रैंडसन है बलि वो कितना महान है। उसकी तरफ से भगवान को उन्होंने थोड़ी याचना की, ब्रह्मा जी ने भी याचना की, विंध्यावली उसकी पत्नी ने भी थोड़ी सी प्रार्थना की उनके सामने। तो उस समय जब वो जाने लगे सूतल लोक में भगवान, तो प्रहलाद ने सोचा कि मैं भी चलूँगा, मुझे भी रोज़ भगवान को दर्शन करने का इच्छा है, अभी स्वयं भगवान मुझे सूतल लोक में दर्शन करने मिलेंगे तो मैं ये विग्रह यहीं छोड़ के जाऊँगा जो उनको उस समय भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा बना के दिए थे। हाँ, लिंक लग गया ना बराबर से। तो वो विग्रह जो उनके साथ थे उन्होंने यही छोड़ दिए। केरला में एक गांव है वराहपुर नाम का, वहाँ पर उन्होंने वो विग्रह छोड़ दिए। उसके बाद में प्रहलाद जी भी चले गए सुतल लोक में, बलि भी चले गए, भगवान भी चले गए और चक्र भी चले गए साथ में। तो ये एक पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। फिर वराहपुर में कई दिन के बाद में एक यहाँ के हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं, बहुत आनंद की और खुशी की बात यह है कि हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, उसमें एक आचार्य हुए हैं श्रीमान राजेंद्र तीर्थ। और राजेंद्र तीर्थ से जो ब्रांच निकली है वो यही ब्रांच है जो हमारे कास्ट में यहाँ पर होती है। गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों की जो कास्ट में जो परंपरा है वो राजेंद्र तीर्थ से आरंभ होती है, फिर विजयेंद्र तीर्थ, सुरेंद्र तीर्थ ऐसे करके आगे आगे बढ़ती है। और अभी परम पूज्य सुरेंद्र तीर्थ गिरी महाराज जी का यहाँ पर अभी भी है, वो समाज के गुरु हैं हमारे। तो विजयेंद्र तीर्थ जब तभी उस समय कोचिन में थे, हरे कृष्णा तो जल्दी समाप्त करेंगे तो हमको भी आनंद मिलेगा उसका। तो फिर विजयेंद्र तीर्थ को भगवान सपने में आए, नरसिंह भगवान, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से आप निकालो और अपने साथ ले चलो। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वराहपुर में जो भगवान का विग्रह है नरसिंह भगवान का, वो विजयेंद्र तीर्थ महाराज ने लिया और उनकी इच्छा से तुरंत वहाँ से निकल पड़े, वो अपना शिष्यगण अपना समुदाय लेकर चल पड़े। और दिन रात यात्रा करते करते रात को रुकते हुए दिन में चलते हुए ऐसे यहाँ पहुँच गए और केवल यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जहाँ पर रावण ने उमा शंकर का मंदिर बनाया है वहाँ पर वो रुके। जब तक वहाँ आए तब रात हो गई थी और केवल 12 मील का अंतर बाकी था। तो विजयेंद्र महाराज को लगा कि अभी 12 किलोमीटर के लिए रात को क्यों रुकना है, अभी चलना चाहिए भगवान की इच्छा के अनुसार। केवल 12 किलोमीटर एक घंटे का रास्ता है, एक घंटे के लिए रात भर रुकना है पर कल तक उसको पोस्टपोन करना है, इससे अच्छा हम अभी चलेंगे। राजा ने कहा रुक जाओ हमारे पास, तो राजा की इच्छा उन्होंने स्वीकार दिया। राजा से खाली बोला उन्होंने कि हमको आप दीपक की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था करो। तो राजा ने उधर लाइट की व्यवस्था देने में इनकार कर दिया। तो राजा ने वहां पर लाइट देने से इनकार कर दिया, सोचा कि ये तो बाहर गांव के लोग पता नहीं किस जाति के हैं, किस धर्म के, किसको पालन करने वाले, तो मना कर दिया। तो विजयेंद्र तीर्थ को और भी यकीन हुआ कि हमको तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, ये लोग वैसे भी अच्छे नहीं हैं। और वो राजा के मदद के बिना निकलने लगे अंधेरे में। कुछ दो कदम नहीं चले तो एक भयंकर बिजली गिरी जोरदार और वो राजा के महल पर गिरी और राजा का महल जो है ज्वाला में फंस गया, अग्नि की ज्वाला में। और बहुत भयंकर अग्नि की ज्वाला में जब फंस गया, आकाश तक ज्वालाएं पहुंच रही थी, उसका प्रकाश सब जगह फैल गया और उस प्रकाश में विजयेंद्र तीर्थ जो है भगवान को लेकर तुरंत आगे चले गए। और जब तक वो मुल्की नहीं पहुंचे तब तक ये ज्वालाएं जलती रही, उसके बाद वो रुक गई। इसका मतलब राजा ने अगर उनको लाइट का इंतजाम किया होता तो अपने महल को उसको खोना नहीं पड़ता। भगवान ने फिर इनको भी लाइट दिया और उसके अपराध का उसको दंड भी दिया। इतनी भयंकर आग लगी थी। तो फिर बीच में रात में यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर जब पहुँच गए तो वो दिन मार्गशीर्ष महीने का पूर्णिमा का दिन था, जिसको हम लोग आजकल दत्त जयंती के रूप में मनाते हैं, जो यहाँ पर प्रतिष्ठा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं उसको। हमारे भाषा में बोलते हैं प्रतिष्ठा पूर्णव, यानी कि प्रतिष्ठा जिस दिन भगवान की हुई उस पूर्णिमा को प्रतिष्ठा पूर्णव कहते हैं। और उस दिन भगवान का यहाँ पर स्थापना किया। तो इसके पहले जब वो रास्ते में निकल रहे थे, उसके पहले ही जो विजयेंद्र तीर्थ महाराज थे ये स्वयं मूर्तिकार थे, अपने हाथ से कई मूर्तियाँ उन्होंने बनाई थी। लेकिन जब ये मूर्ति उनको प्राप्त हुई तो ऐसे कहा है कि जब ये प्राप्त हुई तब ये कुएं में थी और जब वो कुएं से गुजर रहे थे तभी एक सांप उस कुएं की रक्षा कर रहा था और वो सांप ने विजयेंद्र महाराज को देखते ऐसे कुछ मूवमेंट्स किया। तो विजयेंद्र महाराज को थोड़ा सा डाउट आया कि कुछ है इस कुएं के अंदर। जब उन्होंने कुएं से खोज की तो ये मूर्ति उनको मिली और ये मूर्ति का जो स्वरूप है वो देख के बहुत चकित हो गए। वो एकदम अद्भुत रूप देख के, कैसा रूप है उनका, इतनी सी मूर्ति है, मेरा ये हाथ है ना ये 6 इंच से भी कम है, 4 या 5 इंच ही होगा, इतनी सी मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर दाहिना पैर जो है तो थोड़ा सा मुड़ के खड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा सा 30-45 डिग्री मोड़ के खड़े हैं और उस पर नहीं नहीं बायां पैर जो है वो उन्हें सब मोड़ के खड़े, उस पर दाहिना पैर रखा है जहाँ पर अपना नीज है, क्या कहते हैं उसको, घुटने के ऊपर राइट पैर रखा है, वैसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, उसके ऊपर उन्होंने हिरण्यकश्यप को रखा है, उसका सर राइट साइड में है और पैर लेफ्ट साइड में है, दोनों एक हाथ सर पे ऐसा मुंह पे रखा हुआ है पूरा दबा के, दो हाथ पैर पे रखे ऐसा, दोनों हाथ से जोर से दबा के रखा है उनको एकदम टाइट कड़क, और दो हाथ से उनका पेट वो फाड़ रहे हैं और दो हाथ से उनकी आंते निकाल के माला पहना रहे हैं, और दो हाथ में एक हाथ में चक्र है एक हाथ में शंख है, ऐसा बहुत अद्भुत दर्शन है, और जिह्वा उनकी ऐसे बाहर लटक रही है, बहुत आंखें ऐसी बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई है, इस तरह से उनका दर्शन है। ये मूर्ति देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ, उनका पूजन शुरू किया, जैसे ही पूजन शुरू किया थोड़ा सा भी उनकी पूजा में कुछ गलती यहाँ से वहाँ हो गई तो तुरंत आग लगती थी, झगड़े होते थे, संघर्ष होता था तुरंत ही, फिर थोड़ा उसको आगे लेके गए तो वहाँ पर भी वही कथा थी, और उसके बाद उन्होंने उनको आदेश दिया कि हमें यहाँ से ले चलो और मुल्क के मेरे को, क्योंकि विजयेंद्र तीर्थ महाराज परेशान हो कि हे भगवान अब मैं आपको कैसे सेवा करूँ, ये सब कलयुग का वातावरण है, यहाँ पर मिनट टू मिनट सेकंड टू सेकंड थोड़ा गलती हो गया तो हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे आपकी सेवा में, इसलिए मेरी इच्छा ये है कि मैं समुद्र में कूद जाऊँगा आपके साथ ही, क्योंकि मैं आपको शांत नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने उनको दृष्टांत दिया, उन्होंने कहा आप मुझे मुल्क ले जाओगे तो वहाँ पर मैं शांति से रहूँगा, और जहाँ जहाँ रास्ते में वो रुके वहाँ पर भी यही तक कष्ट हुआ, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तब उसके आगे वो झगड़ा वगड़ा होना, अग्नि का निर्माण होना सब बंद हो गया। आज भी इस गांव में कहीं भी किसी भी घर में नरसिंह भगवान की मूर्ति या भगवान का फोटो नहीं है, इसलिए हमारे डॉक्टर श्यामलाल प्रभु की पत्नी और सब लोग मिलकर एक नाटिका करने वाले थे, हिरण्यकश्यपु को मारना नरसिंह भगवान द्वारा, लेकिन इसकी गांव में एक बहुत बड़ी गंभीर घटना है इस गांव की, कि इस गांव में जब भी नरसिंह भगवान की नाटिका करने का प्रयास किया गया उस समय नरसिंह भगवान का किरदार करने वाले के अंदर नरसिंह भगवान का आवेश होता है और वो वास्तव में हिरण्यकश्यपु का एक्टिंग करने वाले व्यक्ति को फाड़ कर खत्म कर देता है। डोंट लाफ, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। जब ही उन्होंने कोशिश की एक दो बार देखा तो उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष आवेश आकर उस व्यक्ति ने हिरण्यकश्यपु के रोल करने वाले व्यक्ति को तुरंत फाड़ दिया पूरा कंप्लीट, उसको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। इसलिए इस गांव में कहीं भी नरसिंह लीला की नाटिका नहीं होती है, केवल सुन सकते हैं आप। यही नहीं कि जहाँ जहाँ हमारे इस इलाके में गांव के कई कई गांव हैं, मतलब है दसों पंद्रह बीस ऐसे गांव होंगे लगातार, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब एकदम आर्डेंट डिवोटीज ऑफ नरसिंह भगवान, ऐसे गांव के सिंपल सिंपल लोग हैं लेकिन नरसिंह भगवान की बात शुरू करेंगे ना ऐसे आवेश में आके आपको पूरा एक्शन पैक ड्रामा दिखा देंगे, कैसे भगवान ने अपने झंगा पर रखकर नरसिंह भगवान को दो हाथ से फाड़ दिया, उनकी आंतों को रखकर गले में पहना दिया, दो हाथ से पकड़ कर रखा ऐसा फाड़ दिया उनको, ऐसे एकदम बहुत हमारी भाषा में बहुत प्रेम से बताते हैं। हाँ बताओ क्या कोंकणी में? तो पायर दौड़नु, पायर दौड़नु, उम्र बैसनु, हाथन घट्टी दौड़नु, पैट पुन दिन सोनु तकल आंत काणु गळन खल्या। इस तरह से उन्होंने, मैं स्वयं सुना है उनका ये उत्साह और उनका आवेश, तो इस तरह से ये नरसिंह भगवान का विग्रह यहाँ पर विराजमान। अभी कुछ नहीं, मुझे पूछा था बिंदु माधव का नाम बिंदु माधव कैसे पड़ गया, वो बिंदु माधव का विग्रह भी यहाँ से बाहर से आया हुआ है। जब भी काशी में औरंगजेब ने हमला किया तो काशी में बहुत बड़ा आज भी बिंदु माधव का मंदिर है, तो लेकिन जब काशी में जब औरंगजेब ने हमला किया तो पूरा मंदिर सफाचार कर दिया उसने, तो उसके पहले ही वहाँ के पुजारी जो थे वो बिंदु माधव जी को लेकर भाग गए, और साथ में बिंदु माधव के जो गार्ड थे बॉडी गार्ड काल भैरव, ये जो काल भैरव अग्नि भैरव जो है ये भगवान के गण हैं जो भगवान की रक्षा करते हैं, उनके आगे पीछे डोलते रहते हैं, इसका सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर देखे ना अपने पत्थर बहुत सुंदर सुंदर रखे हुए हैं, वो सब भगवान के गण हैं, वो रक्षक है भगवान के, भगवान को कोई रक्षा की जरूरत नहीं है लेकिन भगवान की रक्षा लोग करते हैं सेवा के रूप में। तो जो माधव जी थे उनका नाम माधव नहीं था उस समय, माधव यानी लक्ष्मी के पति, लेकिन ये माधव ने जब भी मोहिनी का जो धारण किया था और देवताओं को अमृत बांटा था तो उनके हाथ में एक बूंद अमृत की चिपक गई थी और वो वैसे के वैसे रही, इसलिए उनका नाम पड़ा बिंदु माधव, ये कथा है। दूसरी कथा यह है कि उनका एक बहुत ही तीव्र भक्त था, उनका नाम था अग्नि बिंदु, तो अग्नि बिंदु इतनी तपस्या और भक्ति करते थे, उसकी तपस्या और भक्ति देख के भगवान पर प्रसन्न हो गए। और कभी कभी जानते हैं ना भगवान, अमुक तमुक के भक्त भगवान इस नाम से जाने जाते हैं। अभी हम जब बड़े हो जाते तो हमारी बेटी के पिता के नाम पे हमारी पहचान होती है, उसके पहले हमारी बेटी की पहचान हमारी बेटी के रूप में होती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है और कुशल बन जाती है तो फिर उनकी पहचान जो हमारी पहचान जो है उनके पिता की तरह बन जाती है। तो वैसे अग्नि बिंदु के भगवान माधव, इसलिए उनका नाम बिंदु माधव रखा गया। और वो बिंदु माधव फिर यहाँ पर आके विराजमान हुए और औरंगजेब का आतंक समाप्त होने के बाद में और मंदिर का निर्माण किया गया और वहाँ नए बिंदु माधव रखे गए और औरंगजेब बिंदु माधव जो है वो यहाँ पर। हरे कृष्णा। इस तरह से मंदिर का इतिहास है। हरे कृष्णा। बहुत ऐश्वर्य संपन्न मंदिर है और मंदिर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है कि इसके अंदर भी सर्कल देखा ना अपने मंदिर में, एक और सर्कल है, उसके अंदर भी एक सर्कल है और उसके अंदर भगवान है। तो ये एक सर्कल है, इसके बाहर भी एक सर्कल है और उसके बाहर भी एक सर्कल है और पूरे सर्कल के अंदर सब ब्राह्मण लोग रहते हैं जो उसकी पूजा करते हैं। पूरा शहर बसा हुआ है ब्राह्मणों का और सब लोग टर्न बाय टर्न भगवान की सेवा में आते हैं और गाँव के सब लोग का जीवन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मतलब इसके गांव के आगे कहीं उनको पूछने की प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तो कोई समस्या होती है मंदिर में आते हैं, यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसको पालन करते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट हियर, ओनली वन कोर्ट ऑफ वेंकटरमणा। और एक अद्भुत बात समझ जैसी है कि सबसे पहले वेंकटरमणा जो है वो यहाँ पर आकर बसे, फिर वो वेंकटरमणा भक्तों के लिए इतने प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि हमारे समाज के स्वामी ने जगह जगह वेंकटरमण के मंदिर बनाए। जैसे कि अभी मुल्की में है, फिर कारकाड़ में है, फिर उडुपी में है, फिर मैंगलोर में है, फिर सूरतकल में है, फिर आगे जाएंगे तो कुंदापुर में है, कुंदापुर से आगे भटकड़ में है। ऐसे हर गांव में वेंकटरमण के मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन मूल जो वेंकटरमण का मंदिर है वो ये है और इसी के नाम से वेंकटरमण का मंदिर जो है पूरे साउथ कैनरा में प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो प्रतिष्ठा की उत्सव है, प्रतिष्ठा की पूर्णिमा का उत्सव जो है वो तो पूरे हमारे साउथ कैनरा में जो गोकर्ण से शुरू होता है और आगे समाप्त होता है कासरगोड तक, वहाँ तक फेमस है। अभी 25-26 नवंबर को प्रतिष्ठा का उत्सव यहाँ पर हुआ, हर साल होता है, कम से कम 500 साल पूरे हो गए उसको प्रतिष्ठा करने के बाद और 25,000 नारियल कम से कम उसमें काटे जाते हैं और सब लोग गांव के जवान लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर बड़ी फीस्ट बनाते हैं और 25,000 लोग वहाँ पर आते हैं और सब लोग भोजन प्राप्त करते हैं। और रात में रोज़ इस मंदिर में रथ यात्रा होती है, जैसे उडुपी में होती है और उडुपी में जैसे रथ यात्रा होती है वहाँ पर भी होती है और उसके बाद में सब लोग प्रसाद पाते हैं। और प्रतिष्ठा पूर्णिमा के दिन सोने की पालकी में रथ यात्रा होती है और यहाँ पर नहीं, वो बाहर के सर्कल में होती है, पूरे मेन सर्कल में जहाँ पर शुरुआत होती है ना, वो हम लोग गेट के अंदर प्रवेश किया ना, वो सर्कल में वो रथ यात्रा होती है। और उस रथ यात्रा के समय पे आकाश में फायर वर्क्स हो रहा है, पूरा दारू काम जो है पटाखे फूटते हैं आकाश में और उसके साथ में रात को 4 बजे तक रथ यात्रा होती है। बहुत भव्य उत्सव होता है और उसके लिए पूरा ये मंदिर जो है पूरे साउथ कैनरा में फेमस है। उसकी रचना कैसी है, ये वेंकटरमणा का जो मंदिर है, जो स्ट्रक्चर है, ये आप जिधर भी जाएंगे, कारकाड़ा में जाएंगे वहाँ पर भी मंदिर है, मैंगलोर में भी है, स्ट्रक्चर एक ही है। सबसे पहले बहुत बाहर की बड़ी जगह, उसको अंदर जाएंगे तो एक अंदर सर्कल मिलेगा आपको, उसके अंदर जाएंगे तो और एक सर्कल मिलेगा, फिर 4 देवता मिलेंगे, एक हनुमान जी, फिर एक देवी, कोई भी देवी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, अलग अलग हो सकती है, लेकिन हनुमान जी, फिर एक देवी, फिर गणेश जी और फिर गरुड़ जी। हनुमान जी गरुड़ जी आपको सामने मिलेंगे और आगे फिर 2 व्यक्ति रहेंगे। यही स्ट्रक्चर आपको सब जगह मिलेगा और सब जगह पर आपको चांदी के पड़ी से तीर्थ मिलेगा और चंदन मिलेगा और तुलसी मिलेगी। देवी के पास आएंगे तो फूल मिलेगा और चंदन मिलेगा। और जहाँ पर मेन, जब यहाँ पर जहाँ मनोज चव्हाण जी खड़े हैं वो भगवान की सेवा करने वाले लोगों का एंट्रेंस है। मनोज चव्हाण जी हाथ दिखा कर, जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ पर एक एंट्रेंस है, उसके ठीक सामने यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है, देखो आप, है ना, वहाँ से प्रसाद बनकर यहाँ किचन गौशाला, अपना प्रसाद बनाने की स्वयं पाकशाला है, वहाँ से भोजन जब आता है तो रोड रोक देते, किसी को क्रॉस करने देते नहीं है, सब लोग खड़े रहते हैं ऐसे। भोजन वहाँ प्रवेश करता है, वहाँ से अंदर पहुँचता है, और वो सारा भोजन जो है वो तांबे के हंडे में भोग लगाते हैं उसको। एक तांबे के हंडे में चावल, उकड़ा चावल, एक तांबे के हंडे में दाल सांभार, एक तांबे के हंडे में सब्जी, एक तांबे के हंडे में मिठाई, ऐसे सबको जो है हंडे में अंदर रखते हैं और बहुत सुंदर तरीके से मंत्र बोलकर तुलसी डालकर उसको अर्पण करते हैं। फिर वही सब हंडे उठाकर गरुड़ जी को, हनुमान जी को, देवी को, गणेश जी को, सबको अर्पण करते हैं और तुरंत जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनके बोलते हैं चलो सब लोग प्रसाद के लिए चलो, एवरीबॉडी विल बी कॉल्ड टू प्रसाद। यहाँ की रिवाज है, आप कभी भी यहाँ पर आएंगे कभी भी आ जाइए, आप अकेले आइए, चार लोग को लेके आइए, जब भी आप आरती में खड़े मिलेंगे तुरंत पुजारी आपको बोलेंगे चलो प्रसाद मिलो। यहाँ का गुरु जी का आदेश है कि यहाँ पर जो भी रहेंगे आरती के समय सबको प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीका है, कोई यहाँ पर कोई चंदा नहीं मांगता है, डोनेशन नहीं मांगता है, परेशान नहीं करता है किसको, आओ आराम से भगवान का दर्शन करो, बहुत प्रेम से भगवान का श्रृंगार करते हैं। यहाँ का जो मोगरा है उसको कहते हैं कोडियार मोगरा या मल्लिगे कहते हैं, और बहुत सुंदर उसका स्वाद सुगंध होता है, हर घर के आंगन में वो बनता है, फिर इकट्ठा करके उसको बांध कर बेचते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो, और हमारी शादी में उसको पहनते हैं तो यहाँ से प्लेन से बॉम्बे जाता है, वो लोग वहाँ पर भगवान को पहनाते हैं, दुल्हन को पहनाते हैं, तो उसी सुंदर फूल से साल भर भगवान का श्रृंगार होता है, इसलिए वो सुगंध जो है वो मंदिर में जाते ही पूरा सुगंध आते रहते हैं। और जितने भी अलंकार हैं सब हीरे के और सोने के हैं और चांदी के हैं, चांदी के तो भगवान को पहनते नहीं हैं, भगवान के केवल सोने के और जल, यस जल, हाँ हाँ जय 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 असंत। सो क्या कह रहा था मैं,
सोने का,
हाँ स्वर्ण का और हीरे का अलंकार से उनका श्रृंगार करते हैं बहुत सुंदर, और नरसिंह भगवान का बार बार अभिषेक करते हैं उनको ठंडा रखने के लिए, सुबह उनको जो गंजी होती है ना चावल की उसका भोग लगाते हैं, बहुत फेमस है यहाँ का भोग जो है। तो अभी 5 मिनट के अंदर स्वर्ण की पालिका के अंदर भगवान के जुलूस निकलेगा, लोगों को विनती है, उन्होंने मुझे बताया है आपको कि स्वर्ण की पालिका को, पालकी को छूने का प्रयास मत करो, वो क्या कहते हैं उसको ना, वो हाउ टू टेल यू, वो शुद्धि के वस्त्र में रहते पंडा लोग, सब लोग सोवळ्यामध्ये असतात सगळे, आणि वो पालकी भी वैसे रहती है, तो आपको वहाँ पर रहना नहीं, आपको आगे रहिए, उसके पीछे रहिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, आराम से प्रेम से प्रार्थना कीजिए, दर्शन कीजिए और पालकी का आनंद लीजिए। उसके बाद में 7 तो बज रहे हैं, जैसे पालकी शुरू होगी 10-15 मिनट के बाद में हम सबका प्रसाद का इंतज़ाम है, हम लोग जहाँ बैठे हैं उसके ऑपोजिट साइड में प्रसादम हॉल है, वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया है कि प्लेट में बुफे सिस्टम का इंतज़ाम किया, हमारे पास थोड़ा मैन पावर कम है इसलिए हमने केले के पत्ते का रिक्वेस्ट किया था, वो उनको मुमकिन नहीं है, तो बुफे सिस्टम है, आप प्लेट लीजिए और बैठ जाइए और जितना चाहिए उतना लीजिए, आनंद से प्रसाद लीजिए। मुल्की का प्रसाद बहुत फेमस है, बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं उसके लिए बहुत लालायित रहता हूँ और पागल भी हो जाता हूँ, इतना सुंदर यहाँ का स्वाद है, उसका सब आपको आनंद मिलना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ तक लेके आया हूँ, और ये मंदिर का वातावरण, इसका शुद्धि पवित्रता सबका अनुभव कीजिए, हाँ यही हमारे जीवन के आनंद की देन है। नए साल का आगमन होने वाला है, पुराना साल समाप्त होने वाला है, दुनिया भर के लोग अनंत प्रकार के पाप करते हैं आज, हाँ आनंद के कारण, आनंद लेने के हेतु अनंत प्रकार के पाप करके साल भर में जितने पाप नहीं कर सकते वो एक रात में कर देते हैं और नरक का रास्ता गारंटी के रूप में बना देते हैं अपना, और हम लोग सब एकत्र होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये हमारी कितनी बड़ी भाग्य की बात है। आप लोगों के संग में सब यात्रा हो रही है, सब जगह प्रसाद बढ़िया से मिल रहा है, नरसिंह भगवान का और उडुपी कृष्ण का और हर प्रकार का, तो यहाँ पर भी महाप्रसाद का इंतज़ाम है। वेंकटरमण जी, उग्र नरसिंह भगवान जी और बिंदु माधव जी का महाप्रसाद आप सबके लिए प्रस्तुत होगा। हरे कृष्णा। और उम्मीद है कि 8:15 बजे हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, 1-1.5 घंटा लगेगा, 9:30 हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से सो जाएंगे। उग्र नरसिंह भगवान की, वेंकटरमण भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे।